तुम कभी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाओगे अगर तुमने खुद पे काम करना स्टार्ट नहीं किया। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैंने आज तक जो जो सीखा है मेरी गलतियों से, मेरे लाइफ की जर्नी से, मेरे एक्सपीरियंस में, और उन सब चीज़ों ने मुझे हेल्प किया एक बेटर इंसान बनने में। लाइफ में ना कोई भी एक दिन नहीं आता चेंज होने का, छोटे छोटे डिसीजंस लेने पड़ते हैं डेली जो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाते हैं, जो तुम्हें पावरफुल बनाते हैं, जो तुम्हें लाइफ में हर चीज़ को अचीव करने लायक बनाता है। तो आज का वीडियो चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, विजडम, हेल्थ, इन्फ्लुएंस एंड रिलेशनशिप्स। मुझे लगता है ये चारों पार्ट इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन चारों को अगर हम डेली इम्प्रूव करने की कोशिश करें तो हम एक बहुत बेहतर और सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। मैं पूरे साल, हर साल रोज रात को हजारों चीज़ें लिखता हूँ जो मेरी मिस्टेक्स हैं और जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ आसपास मेरे, और उनके बेसिस पे मैं ये पॉइंट्स बनाता हूँ जो मुझे भी हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये पार्ट है इन्फ्लुएंस का। बहुत लोगों को लगता है कि ये तो गलत है, ये ट्रिक्स हैं, ये टेक्निक्स हैं, ये हैक्स हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना तो हमें सीखना होगा कि कैसे हम पावरफुल बने, कैसे हम इन्फ्लुएंशियल बने। इनफैक्ट एक कोट है जो मुझे बहुत पसंद है, उसका मीनिंग ये है कि लाइफ में आप कितने सक्सेसफुल होते हो उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है कि आप कितने ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हो अच्छी चीज़ के लिए। तो इसीलिए ये कुछ हैक्स हैं जो मैंने सीखे हैं मेरी लाइफ में, जिनसे आप लोगों के ऊपर और लोगों के साथ बेटर इन्फ्लुएंस प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सीख लो, बहुत हेल्प होगी। तो पहला पॉइंट है, डोंट बी इंटरेस्टिंग। हर कोई ये बोलता है कि इंटरेस्टिंग बनो, तुम लाइफ में ना बहुत इंटरेस्टिंग बनो यार, तुम्हें एक बहुत अमेजिंग बंदा बनना पड़ेगा, बहुत अमेजिंग बंदी बनेगी तभी लोग तुम में इंटरेस्टेड होंगे। मैं बिलीव नहीं करता इस पर। मैंने इतने सालों में इतने कनेक्शंस बनाने के बाद ये सीखा है, इंस्टेड ऑफ बीइंग इंटरेस्टिंग बी इंटरेस्टेड। मतलब तुम अगर कितने भी इंटरेस्टिंग बंदे हो और तुम दूसरों के सामने जाके सिर्फ ये बता रहे हो कि तुम्हें ये आता है, तुम्हें वो आता है, तुम्हें किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम किसी नए इंसान से अगर मिलते हो ना तो बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड, तुम उन्हें जानने की कोशिश करो, क्योंकि तुम अगर उनमें इंटरेस्टेड होगे, उन्हें जानने की कोशिश करोगे जेन्युइनली, तो वो तुम में इंटरेस्ट लेंगे। दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू फॉर्म कनेक्शंस इंस्टेंटली। और जिनसे तुम इंटरेस्टेड नहीं हो उन्हें इग्नोर करो। जेन्युइनली जो दिख रहा है इंटरेस्टिंग और तुम्हें लगता है कि उसे बात करनी चाहिए, जाओ और उनसे बात करो, क्योंकि तुम उनसे क्वेश्चंस पूछोगे ना तो वो बताएंगे। हर इंसान को बात करना पसंद है, उनके यहाँ सुनने वाले कम है। तुम जाके एक सुनने वाला बनो। मेरा तो पूरा करियर उस पर बन गया है तो तुम्हें भी ये बहुत हेल्प करेगा जितना ये मुझे हेल्प किया है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट कॉम्प्लीमेंट ऑन द वे आई लुक। तुम्हें अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट एज चाहिए दूसरे लोगों के ऊपर, तुम चाहते हो कि तुम स्टैंड आउट करो अपने ऑफिस में, एक क्लब में, अपने दोस्तों में, तो स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग बियॉन्ड फिजिकल एट्रीब्यूट्स। मतलब जो तुम्हें दिख रहा है ना उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट मत करो सामने वालों को। तुम ये मत बोलो कि ओके आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी शक्ल बहुत अच्छी लग रही है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपकी आईज बहुत अच्छी है, आपका चश्मा अच्छा है, आपके जूते अच्छे हैं। ये ना बड़े शैलो कॉम्प्लीमेंट से ये हर कोई करता है क्योंकि हर किसी को दिख रहा है। आज से तुम कॉम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो कैरेक्टर पे, इंटेलिजेंस पे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे, इमोशनल स्टेबिलिटी पे, क्योंकि जब तुम इनके बारे में कॉम्प्लीमेंट दोगे ना तुम स्टैंड आउट करोगे, क्योंकि इसके बारे में कॉम्प्लीमेंट रेयरली कोई देता है। तो तुम जाके ये बताओ लोगों को कि यार जैसे तूने उस सिचुएशन में सोचा ना बहुत अच्छा था, आई लव द वे यू थिंक, आई लव योर थॉट प्रोसेस, आई लव द वे यू टॉक, तेरा एटीट्यूड उस टाइम पे जो था ना वो बहुत अच्छा था। जब जब ऐसी बातें करोगे तो बहुत डेप्थ होता है इनमें एंड यू ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट। तो नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट आस्क मी रिक्वेस्ट मी। अगर हमें किसी से कुछ काम कराना हो तो हम क्या बोलते हैं, क्या आप मेरे लिए कर दोगे, क्या आप मेरे लिए पानी लेके आ जाओगे, क्या आप मेरे लिए वीडियो एडिट कर दोगे, क्या आप मेरे लिए ईमेल भेज दोगे, क्या आप मेरे लिए फ़ोन कर दोगे, क्या मेरे लिए आप उससे बात कर दोगे। ये ना तरीका थोड़ा सा गलत है। अगर हमें शॉर्ट शॉर्ट किसी से काम करवाना हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ना सेंटेंस स्टार्ट करना चाहिए प्लीज़, इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन कुड यू डू दिस फॉर मी, हमें स्टार्ट करना चाहिए प्लीज़ डू दिस फॉर मी। हमें हर सेंटेंस के पहले ये लगा देना चाहिए कि प्लीज़ मेरे लिए कर दे, प्लीज़ मेरे लिए वीडियो एडिट कर दे, प्लीज़ मेरे लिए व्हाट्सएप मैसेज भेज दे, प्लीज़ मेरे लिए उससे बात कर दे। इसमें क्या होता है, तुम सटली सामने वाले को बता रहे हो कि ये उसे करना है, बट एट द सेम टाइम तुम उसको एक हम्बल टोन से पूछ भी रहे हो या उसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ ये मेरे लिए कर दे। ये ना साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है जो बहुत सारे रिसर्चर्स ने निकाली थी कि जब भी तुम प्लीज़ डू दिस करके करते हो 74% लोग तुम्हें मना नहीं कर पाते। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन स्टार्ट टेलिंग पीपल एंड स्टार्ट दैट सेंटेंस विथ प्लीज़। नेक्स्ट पॉइंट है, आई रियली अप्रिशिएट दैट यू टोल्ड मी दिस। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम्हें उससे और ज़्यादा बातें निकलवानी है या तुम्हें उससे और ज़्यादा अपना रिलेशनशिप डीप करना है या तुम चाहते हो कि सामने वाला और तुम्हें कुछ चीज़ें शेयर करे, तो तुम ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। तो तुम क्या करोगे, जब भी कोई तुमसे कुछ भी शेयर करेगा, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा कॉलीग, एक स्ट्रेंजर, बहुत नॉर्मल चीज़ भी अगर वो शेयर करे, तो तुम्हें बोलना है आई रियली अप्रिशिएट दैट यू शेयर दिस विथ मी। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने मेरे साथ ये शेयर किया। जैसे ही तुम सामने वाले का शेयरिंग वैलिडेट करते हो, वो और ज़्यादा ओपन हो जाता है और चीज़ें बताता है। ये हम पॉडकास्ट में यूज़ करते हैं, ये मेरे एक मेंटोर ने मुझे ये टेक्निक बताई थी एंड उसके बाद से मैंने जब से पॉडकास्ट में स्टार्ट करी ये मैंने लाइफ चेंज देखा। तो आप भी ये यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहते हो दूसरे लोग आपसे और ज़्यादा चीज़ें शेयर करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, किल देम विथ काइंडनेस। अगर आप एक आर्ग्यूमेंट में हो, डिस्कशन में, एक फ़ाइट के बीच में हो और आप चाहते हो कि ये सिचुएशन डिफ्यूज़ हो जाए, थोड़ी स्टेबलाइज हो जाए, तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि सामने वाला जो भी बोल रहा हो ना, उसके बाद आप एक सेकंड का पॉज लो, उसकी फीलिंग को वैलिडेट करो और फिर एक कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो मैं मेरी लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। सो मेरी गर्लफ्रेंड ना, वो छोटी छोटी बातों पे कभी कभी मुझसे लड़ लेती है एंड उसे ना सब याद रहता है कि एक साल पहले क्या, दो साल पहले क्या, दस साल पहले क्या, 15 साल पहले, उसको सब बचपन की बातें भी याद रहती है, जो बता दो उसको हमेशा याद रहता है। तो वो हमारी फाइट्स के बीच में वो चीज़ें वो लेके आती है एंड देन जब वो लड़ रही है और मुझे बोल रही है कि यार ये तूने तब किया था, ये तूने तब किया था, तो उस टाइम पे मैंने एक छोटा सा एक पॉज लेता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ कि हाँ यार, ये जो तू बात बोल रही है वो वैलिड पॉइंट है, पर वैसे पता है ये तो मानना पड़ेगा कि तेरी मेमोरी बहुत सही है क्योंकि तुझे हर चीज़ याद रहती है, जो चीज़ तुझे अफेक्ट करती है वो तुझे याद रहती है, मुझसे तो हो ही नहीं पाता यार, दिस इज़ सो गुड अबाउट यू, तुझे ना हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रहता है। जैसे ही जब मैं ये इस बात पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो उसका फोकस पूरा लड़ाई और अटैक से हट के इस पे चले जाता है एंड थोड़ी सी स्टेबलाइज होती है, क्योंकि रियलिटी में भले वो मेरी गर्लफ्रेंड हो या मेरी मॉम हो या मेरे डैड हो या कोई भी आपका पार्टनर हो या जो भी सामने वाली पार्टी है, उन्हें भी अटैक तो करना नहीं है, वो उस टाइम पे हाइपर इमोशनल है, इसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, तो उसको डिफ्यूज़ करना, उसको स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही आप ये करते हो, थोड़ा सा टेंशन शिफ्ट करते हो, सामने वाला भी नॉर्मल होता है और फिर वो आगे की कॉन्वर्जेशन नॉर्मली चलती है इंस्टेड ऑफ जस्ट इन अटैकिंग जोन। आप भी ट्राई कर सकते हो, इट ऑलवेज वर्क्स। नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली रिमेंबर स्टार्ट और एंड। एक क्वेश्चन है तुम सबके लिए, तुम्हें ये याद है कि तुमने कल क्या किया था? आई एम श्योर मेजॉरिटी लोगों को ये याद होगा कि कल या तो रात को क्या किया था या सुबह क्या किया था, क्योंकि मेजॉरिटी लोग 90% से ज़्यादा लोगों को ये याद रहता है कि उनका दिन स्टार्ट कैसे हुआ था या एंड कैसे हुआ था। तुम अब इस फैक्ट को अपने बेनिफिट की तरह यूज़ कर सकते हो। मान लो तुम किसी जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हो, तो ट्राई करो कि तुम या तो फर्स्ट एक दो कैंडिडेट्स में से हो या लास्ट एक दो कैंडिडेट्स में से हो। तुम अगर बहुत एक इंपॉर्टेंट मीटिंग लेने जा रहे हो या तुम फंड रेजिंग करने जा रहे हो या तुम्हें पता है कि ये बहुत क्रूशियल मीटिंग है, तो तुम या तो डे के स्टार्ट में करो या डे के एंड में करो। तुम्हें पता है कि तुम डेट पे जा रहे हो या तुम्हें किसी को इम्प्रेस करना है या किसी से मिलना है या तुम किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, तुम्हें अपना अच्छा इंप्रेशन देना है, तो ये ट्राई करो कि वो या तो डे की लास्ट मीटिंग हो या डे की फर्स्ट मीटिंग हो, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को वो ही याद रहता है जो उन्होंने या तो स्टार्ट में किया था या एंड में किया था, और फिर वो उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं और उस चीज़ का इम्प्रेशन लंबे समय तक रहता है। तो इस फैक्ट को अपने बेनिफिट की तरह यूज़ करो। ये पार्ट है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स ना सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, पार्टनर्स के बीच में नहीं होती, रिलेशनशिप हर दूसरे इंसान के साथ होती है। एक स्ट्रेंजर के साथ भी एक बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता होता है एंड मुझे लगता है रिलेशनशिप्स दो लोगों का इक्वल पार्ट है, पर चूंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी रिलेशनशिप बेटर करने में, तो मेरा इस पर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। और यही पर्सपेक्टिव आपको भी रखना चाहिए कि आप एक बेहतर पार्टनर बनो, ताकि सामने वाला पार्टनर ऑटोमेटिकली आपके साथ लेवल मैच करे और आपकी रिलेशनशिप और बेटर हो जाए। अब ये सारे पॉइंट्स उसी बारे में है कि कैसे आप खुद को एक रिलेशनशिप में बेटर बना सकते हो, ताकि आपकी लाइफ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो और ब्यूटीफुल होते जाए। तो ये पॉइंट है, डोंट कमांड एंड कंट्रोल। हम हमेशा जब भी हमारे कॉलीग के साथ रहते हैं, हमें क्या लगता है कि मैं उसको एक काम बोलूं और वो हो जाए। हम जब भी किसी को लीड करने की कोशिश करते हैं लाइफ में, तब हमें क्या लगता है ये मेरी बात सुन ले और हो जाए। हम हमेशा कमांडिंग और कंट्रोल मोड में होते हैं। एंड अगर हमें किसी से कुछ काम करवाना है और वो रिलेशनशिप अच्छी भी चलानी है, तो हमें कमांड और कंट्रोल मोड ना छोड़ना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन एंड सपोर्ट मोड पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एक एम्प्लॉई है और मैं उसे हर बार सिर्फ ये बोलता हूँ कि यार ये सेल नहीं हो पाई, मुझे अब सेल करके दे, ये वीडियो अच्छा नहीं आया, मुझे वीडियो अच्छा बना के दे, अरे ये करके दे, अरे वो करके दे, तो हमेशा मैं कमांड कर रहा हूँ और सामने वालों को लगेगा कि यार ये क्यों बोलता रहता है, ये क्यों इरिटेट कर रहा है। तो इसलिए मैं 90% ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस पूछूंगा या सपोर्ट करूंगा। तो मान लो मुझे मेरी सेल्स बढ़ानी है, तो मैं उसे इंस्टेड ऑफ गिविंग एन ऑर्डर, मैं उसे ऑर्डर देने की जगह ये बोलूंगा कि यार लास्ट मंथ की ना सेल अच्छी नहीं हुई थी, बता कैसे बढ़ाए, मैंने क्वेश्चन पूछा। या मैं ऐसा बोलूंगा कि यार लास्ट मंथ की सेल अच्छी नहीं हुई थी, इस मंथ अपन दोनों मिलकर ऐसा क्या करें जिससे बढ़े, देखो अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो ना तो मुझे बताना, मैं आके करूँगा, साथ में करते हैं भाई। जब मैं बार बार उसे ये रियलाइज़ कराऊंगा और बार बार ये बताऊंगा कि हम दोनों साथ में ये कर सकते हैं, तब उसे ट्रस्ट होगा। एंड जब वो ट्रस्ट होने लग गया, तब मैं सिर्फ 10% सिचुएशन में कमांड या कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड नेक्स्ट टाइम वो मुझे डाउट नहीं करेगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है। एंड ये हर रिलेशनशिप में हो सकता है। आप सामने वाले को ये रियलाइज़ कराओ कि आप हमेशा हो उसके लिए, आप ये रियलाइज़ कराओ कि आप चाहते हो साथ में इसको बेटर बनाना, इंस्टेड ऑफ उसके ऊपर सिर्फ ये थोपना कि तूने ये नहीं किया तू अगली बार करके देना। क्योंकि जब तक सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक आप कमांड और कंट्रोल भी नहीं कर सकते रिलेशनशिप को। जब आप ट्रस्ट बना लोगे, तब आपकी रिलेशनशिप बेटर हो जाएगी। एंड ऐसा ही सामने वाला आपके साथ करेगा और आप उसके साथ करोगे, तब एक रिलेशनशिप बेटर बनेगी। सो नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट हैव मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस। हमें ना हर कोई ये बोल बोल के प्रेशर करते जा रहा है कि डीप कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन हो चाहिए, वैल्यूएबल कॉन्वर्सेशन हो चाहिए, कुछ एक गहरा मतलब होना चाहिए कॉन्वर्सेशन का। हर किसी से एक तुम गहरी दोस्ती करो, अच्छे क्वेश्चंस पूछो, कुछ अच्छी बातें करो। क्यों क्यों इतना प्रेशर क्यों लगा रहे हो खुद पे? आई थिंक रिलेशनशिप बेटर करने के लिए ना रैंडम और मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, फालतू बकैती होनी चाहिए। क्योंकि जब तुम दोस्तों के साथ सिर्फ बैठे हो और ये प्रेशर नहीं है कि तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है या बहुत वैल्यूएबल बातें करनी है, तभी तो दोस्ती गहरी होती है। एग्जाम्पल, तुम्हारे जो बचपन से फ्रेंड्स हैं स्कूल के कॉलेज के, उनके साथ बैठ के कभी तुम्हें याद है कि तुमने बहुत दिमागदार वाली बातें करी है, खतरनाक, बहुत इंपॉर्टेंट कि देश कैसे चलेगा कुछ बातें करी? रैंडम सिर्फ बकवास करते हो तुम। तुम्हें यही नहीं पता आज तक कि तुमने कौन सी इंपॉर्टेंट बात करी हो, या कोई इंसान भी उसमें से इंपॉर्टेंट है। तुम्हें कुछ नहीं पता कि कोई इंपॉर्टेंट बातें कर भी सकता है, तुम्हें उसकी एबिलिटी भी नहीं पता। बट वो सालों से जो तुम बकवास करते जा रहे हो, उन बकवास के बीच में तुम लोगों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया है कि आज तुम एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी हो। इतनी वैल्यूएबल वो फ्रेंडशिप होती है। तो वो वैल्यूएबल फ्रेंडशिप कैसे बनी? रैंडम मीनिंगलेस कॉन्वर्जेशंस के साथ, जहाँ पे तुम्हें सिर्फ मज़ा आता था। तो इस साल ना ज़्यादा मीनिंगलेस कॉन्वर्जेशंस करो, क्योंकि उन मीनिंगलेस कॉन्वर्जेशंस में ही बहुत सारे वैल्यूएबल रिलेशनशिप बन जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट गिव मी सॉल्यूशंस। जब भी ना तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ब्रदर, मदर, फादर, सिस्टर, कोई भी तुम्हारे पास आ रहा है और वो वेंट कर रहा है, वो बता रहा है कि यार उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरा दिन बहुत बेकार गया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें आके अगर वो बता रहा है, तो उस टाइम पे ना प्लीज़ प्लीज़ उसे सल्यूशंस मत दो। उस टाइम पे उसकी बातें सिर्फ सुनो, क्योंकि उस टाइम पे वो इंसान तुमसे सल्यूशंस नहीं चाहता है, वो चाहता है कि उस टाइम पे कोई उसकी बातें सिर्फ सुन ले। तो मैं ना कल की बात बताता हूँ। मैं मेरी गर्लफ्रेंड के फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा था, तो मेरी गर्लफ्रेंड के फ्रेंड्स ना लेट हो गए और मैं मेरी गर्लफ्रेंड को बोलने लगा, यार ये हमेशा लेट हो जाते हैं, हम लेट हो जाएंगे, वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, और मैं चिड़चिड़ करने लग गया। एंड उस टाइम पे वो मुझसे पूछ लगी, तो मैं क्या करूँ, अच्छा तो क्या सोल्यूशन है, अच्छा तो ये बता दूँ क्या, अच्छा ये कर दूँ क्या। वो मुझे इंस्टेंटली बोलने लग गई कुछ ना कुछ। एंड उस टाइम में मुझे लग रहा था कि यार मैं चाहता ही नहीं हूँ कि कुछ मुझे जवाब दे, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मुझे कोई सोल्यूशन दे, मैं ये चाहता हूँ कि सुने, क्योंकि मैं चिड़ रहा हूँ एट दिस पॉइंट। मैं से वेंट करना चाहता हूँ कि यार ये सामने वाले लेट हो गए हैं, इसकी वजह से हम भी लेट हो गए हैं। उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं था, उसका कोई आंसर नहीं था, उस टाइम पे कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी। मैं सिर्फ ये चाहता था वेंट करूँ। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है हम सबकी लाइफ में जहाँ सामने वाले को वेंट करना होता है, उसे सिर्फ ये बताना होता है कि मैं इस बात को लेकर बहुत गुस्सा हूँ, मैं इस टाइम पर बहुत वरी कर रहा हूँ। तो उस टाइम पर सिर्फ बातें सुनो, कोई सोल्यूशन देने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉप सेइंग दिस टू वेमेन। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं यार इतना टेंशन लेने वाली तो बात ही नहीं है, तुझे इतना टेंशन लेना ही नहीं चाहिए, यार तुझे ऐसा फील ही नहीं करना चाहिए, यू शुडंट फील दिस वे, ये गलत सोच रही है, गलत फील कर रही है तू। हमें ये सब बोलना छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उसे क्या फील हो रहा है, उसे कितना टेंशन लेना चाहिए या ये कितनी बड़ी बात है। हम डिसाइड नहीं कर सकते। और जब भी हम ये बोलते हैं ना कि तुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा फील नहीं करना चाहिए, उस टाइम पर टेक्निकली हम उसे बता रहे हैं कि उसकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। वो जो समझाने की कोशिश कर रही है, हम उसे रिपेल कर रहे हैं, हम उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मे बी वो बात बहुत छोटी हो, बट उस टाइम पर हमें वो समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि उसके लिए वो बात कितनी बड़ी है, छोटी है। तो स्टॉप सेइंग दिस टू वुमेन एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देम इन अ बेटर वे। ये सेंटेंसेस ना अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। अब लड़कों का पॉइंट हो गया, तो नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर ऑल द वुमेन, स्टॉप सेइंग दिस टू मेन। तुम लोग क्या करते हो, तुम बोलते हो कि यार मैं तो तेरी प्रायोरिटी नहीं हूँ, तेरे दोस्तों के लिए तेरे पास बहुत टाइम है, व्हाट अबाउट मी, यार यू शुडंट वर्क दैट मच, इतना सारा काम करेगा, मुझे तो प्रायोरिटी लिस्ट पे तूने कहीं रखा ही नहीं है, दिन भर काम ही करता रहता है, मुझे प्रायोरिटी नहीं देता है। यार तुम ना इन लोगों से बात मत किया करो, ये लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, इससे दोस्ती क्यों कर रखी, इससे क्या मतलब है, इसको क्यों करना, स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स। ये सब बातें बोल के आप मैन को फील करवा रहे हो कि यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल देयर लाइफ। आप उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हो कि किन लोगों के साथ उन्हें घूमना चाहिए, किन लोगों के साथ नहीं घूमना चाहिए, किधर उनका टाइम स्पेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, काम पर कितना टाइम देना चाहिए, घर पर कितना टाइम देना चाहिए। डोंट डू दैट, टेल इट इन अ बेटर वे, नॉट लाइक दिस। जैसे ही तुम उन्हें बोलते हो कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, मैन फील कि आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैट्स वेयर मैन ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम इट, बिकॉज मैन Do not want to be in really controlled environments. The next point है, never cry alone. ये हम सबको ना रूल बना लेना चाहिए, हम सबकी सारी रिलेशनशिप्स में, हमारे सारे फ्रेंड्स के साथ ये रूल बना देना चाहिए कि हम लोग कोई भी अकेले नहीं रोएंगे। हमेशा हमें ये बोला जाता है कि अकेले बैठो, अकेले में रो, vent it out। नहीं, जब हम रो रहे होते हैं ना, हम सबसे वीक होते हैं। एट दैट पॉइंट जब हम वीकेस्ट होते हैं, जब हमें ना उस टाइम पे कोई साथी चाहिए होता है, कोई कंपेनियन चाहिए होता है, आप दोस्तों को ये बता दो कि भाई या बहन मैं तेरे साथ हूँ, जब भी तू रोएगा या रोएगी तुझे मुझे या तो फ़ोन लगाना है या मुझे बुलाना है, साथ में बैठेंगे। एंड जब अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तब आप भी दूसरों को फ़ोन लगाओगे, बिकॉज यू शुड हैव पीपल अराउंड यू, दैट्स द बेस्ट फीलिंग। एंड कोई आपके सामने अगर रो रहा है, तो करना क्या है उस टाइम पे, आपको सोल्यूशंस नहीं दे रहे हैं, यू डोंट हैव टू बी मिस्टर फिक्स इट, आपको उस टाइम पे उन्हीं के साथ उस कीचड़ में से बैठना है। एकदम अगर लो पॉइंट है और एकदम ऐसा एकदम शैलो पॉइंट है ना किसी की लाइफ का, तो उस टाइम पे उसके साथ सिर्फ बैठना है, उसी पॉइंट में सिट इन दैट मड विद देम, डोंट ट्राई टू फिक्स देम, उस टाइम पे सिर्फ वो लेट इट बी। और ये आज से रूल मैंने भी बनाया, आप लोग भी बना लो। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रिगर्स आर गुड। हमें हमेशा ये बताया जाता है कि कोई सामने वाला अगर आपको बहुत गुस्सा दिला रहा है या चढ़ा रहा है या ट्रिगर कर रहा है किसी बात पे, तो बहुत गलत बात है, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ट्रिगर ना एक अपॉर्चुनिटी है जिसपे आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हो और आप ये देख सकते हो कि यार मुझे क्यों इस बात पर गुस्सा आ रहा है, मैं क्यों इस बात पे चिढ़ रहा हूँ? मेरा कौन सा ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसकी वजह से मुझे इस बात पे बहुत चिढ़ आती है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं खुद में फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ या खुद में ऐसे फिक्स नहीं कर पा रही हूँ जिसकी वजह से मैं हर बार जब ये बात होती तब बहुत चिढ़ जाती हूँ या चिढ़ जाता हूँ? ये एक अपॉर्चुनिटी है। हम जब भी ट्रिगर होते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि वो बात हमें चुभती क्यों है। तो जब भी कोई ट्रिगर कर रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी है हम सबको खुद को सुधारने के लिए। तो जो भी आसपास आपके लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं उन्हें थोड़ा पास रखो, क्योंकि वो आपको एक बेहतर इंसान बनाने में हेल्प करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है बट इट रियली हेल्प्स। ये पार्ट है हेल्थ। मैंने ना मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इग्नोर करा है हेल्थ को। मैं हमेशा अपने ड्रीम्स एम्बिशन सक्सेस के पीछे इतना भागते रहा कि मैंने अपनी हेल्थ को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया। ना मैं टाइम पे खाता था, ना टाइम पे सोता था, ना टाइम पे वर्कआउट करता था। मैंने बहुत इग्नोर किया और उसकी वजह से अब थोड़े थोड़े मुझे हेल्थ इश्यूज होने लगे तो मुझे बहुत डर लगने लगा। इसकी वजह से लास्ट एक साल से मैं काफ़ी एक्टिवली अपने आप पर ध्यान दे रहा हूँ। एंड ये हर किसी को जान लेना चाहिए कि अगर हेल्थी नहीं है, हम खुद ही हेल्दी नहीं है, तो क्या ही करेंगे बाकी सब चीज़ों का? क्या करेंगे लोगों को इन्फ्लुएंस करके? क्या करेंगे लोगों के साथ रिलेशनशिप बेटर करके? क्या करेंगे लोगों के साथ बहुत सारा पैसा बना के? इसीलिए ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें पॉइंट्स बहुत कम है क्योंकि मैं खुद इसमें नया नया अभी अभी आया हूँ, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई प्रोमिस ये साल मेरी हेल्थ का सबसे इम्पॉर्टेंट साल होगा। एंड बाय द टाइम ये साल एंड हो मैं मेरी लाइफ का सबसे हेल्दी वर्जन बनूंगा। आपको भी यही ट्राई करना चाहिए। तो ये पॉइंट है मेंटल फिटनेस। हर साल जब हम न्यू ईयर की बात करते हैं तब हम ऑटोमेटिकली ये सोचते हैं कि यार मैं इस साल ना ऐसा रेजोल्यूशन बनाऊंगा जिसमें मैं फिट हो जाऊंगा। तो हम बोलते हैं कि किसी को मोटा होना है, किसी को पतला होना है, किसी को बॉडी बनानी है, किसी को नहीं बनानी है, किसी को ज़्यादा चलना है, किसी को ज़्यादा स्टैमिना बढ़ाना है, हम जिम की मेंबरशिप ले लेंगे। हम हमेशा बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की। इस साल ये डिसाइड करो कि जिस तरीके से तुम्हारे फिजिकल फिटनेस गोल्स हैं ना उसी तरह तुम्हारे मेंटल फिटनेस गोल्स भी होंगे। हम सबको इतनी तेज़ी से मेंटल फिटनेस की ज़रूरत है दैट बहुत लोग तो ये रियलाइज़ भी नहीं करते। एंड स्पेशली इंडिया में जहाँ पे डिप्रेशन सबसे ज़्यादा है। तो मेंटल फिटनेस मतलब क्या? हमें जिस तरह से हम हमारी बॉडी को ट्रेन करते हैं उसी तरह हमारे ब्रेन को भी ट्रेन करना पड़ेगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने के लिए, ज़्यादा फुलफिल्ड फील करने के लिए और ज़्यादा सफिशिएंट फील करने के लिए, ताकि हमें लोनली ना लगे। तो ये कैसे हो सकता है? हम छोटी छोटी चीज़ें ऐसी करें डेली जिससे हमारे ब्रेन को लगता है कि हम चीज़ें अचीव कर रहे हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। कैसे हो सकती हैं छोटी चीज़ें? बस एक डिसीजन लेके और उस डिसीजन को अचीव करके। जैसे मान लो कि आज तुमने डिसाइड किया कि आप दो टाइम ब्रश करोगे, मॉर्निंग में भी नाइट में भी। जब आपने वो किया तो ब्रेन को लगेगा कि यार आप जो सेट करते हो वो अचीव कर ले, तो वो आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। तो डेली कुछ एक ऐसा डिसीजन लो जो आप अचीव कर पाओ, जिसकी वजह से आपका ब्रेन ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएगा। एंड इसी तरह से आप मेंटल फिटनेस के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दो। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बट बहुत लंबे समय तक हेल्प करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है 1 मिनट प्लैंक। हम सबको स्पेशली फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी आने के बाद एक प्रॉब्लम आ गई है। भले हम 18 साल के बच्चे हैं या हम 75 ईयर ओल्ड के सीनियर सिटीजन हैं, दैट इज लोअर बैक पेन। हम सबकी लोअर बैक ना बहुत दुखने लग गई है क्योंकि हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं और सबको प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई टेढ़ा बैठा है, कोई मेढ़ा बैठा है, कोई कैसे ही बैठा हुआ है। एंड इसको ट्रीट करने का एक बहुत छोटा सा सिंपल सा ट्रिक है, एक हैक। 1 मिनट डेली ना 1 मिनट का प्लैंक कर दो। मुझे बहुत प्रॉब्लम थी लोअर बैक पेन की। जैसे ही मैं 1-2 घंटे भी अगर बैठ जाता था ना सिस्टम के सामने या पॉडकास्ट पे या मीटिंग में, मेरा लोअर बैक पेन स्टार्ट हो जाता था। तो घर आके रात को एकदम ऐसे अकड़ जाती थी पीठ। तो जैसे ही मैं रोज़ सुबह उठ के मैं 1 मिनट का प्लैंक कर लेता हूँ। बेड से उतरते से ही सबसे पहले मैं 1 मिनट का प्लैंक कर लेता हूँ, सिर्फ 1 मिनट। ये मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था करने के लिए और जब से मैंने ये डेली करना स्टार्ट किया मुझे बहुत हेल्प करी। एक छोटा सा हैक है 1 मिनट का, कभी भी करो पूरे दिन में, मेरे लिए वर्क करता है सुबह उठते से। आप डिसाइड करो कब करना है। नेक्स्ट पॉइंट है अ बोल ऑफ सैलेड। अभी रिसेंटली ना गौरव तनेजा मेरे पॉडकास्ट पर आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी शुगर लेवल टेस्ट करी। तो जब उन्होंने एक आइसक्रीम खाई तो उनकी शुगर एकदम से बहुत स्पाइक करी। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने आइसक्रीम खाई, लेकिन आइसक्रीम खाने से पहले उन्होंने एक बोल सैलेड खा लिया, एक कटोरी एक प्लेट भर के सिर्फ एक सैलेड खा लिया, और फिर उन्होंने अपना टेस्ट किया तो उनकी जो शुगर स्पाइक थी वो लास्ट टाइम से आधे से भी कम बढ़ी। एंड इसका मतलब ये था कि अगर जंक से पहले वो सैलेड खाते हैं तो शुगर बॉडी में कम स्पाइक करती है। फिर मैंने मेरे न्यूट्रिशनिस्ट से भी पूछा एंड उन्होंने भी यही बोला कि जब भी मुझे जंक खाना हो उसके पहले मैं अगर एक बोल सैलेड खा लूँ तो जंक का असर मेरी बॉडी पे कम होगा। वैसे जंक फूड खाना नहीं चाहिए, प्रोसेस फूड खाना नहीं चाहिए, पैकेज फूड खाना ही नहीं है, पर वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ना जंक फूड खाने में प्रोसेस फूड खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो जब मज़ा आता ही है तो वाई नॉट उसका असर मैं थोड़ा कम कर दूँ। इसकी वजह से मैंने ये एक हैक स्टार्ट किया एंड इसकी वजह से मेरी बॉडी की हेल्थ लेवल्स, एनर्जी लेवल्स एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहता है। सो स्टार्ट यूजिंग दिस, जब भी जंक खाना है तब सैलेड खा लो, क्योंकि उससे भूख तो वैसे ही थोड़ी कम हो जाएगी एंड उसके बाद फाइबर्स बॉडी में बहुत बढ़ जाएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पैराबेन फ्री लाइफ। पैराबेन ना हम सबकी बॉडी के लिए बहुत ख़राब है। वो मेजरली परफ्यूम्स में डलता है, अलग अलग फ्रेग्रेंसेस में डलता है, डिओड्रेंट्स में डलता है, कॉस्मेटिक्स में डलता है, क्रीम्स में डलता है, फेस वॉशेस में डलता है, बहुत सारी चीज़ों में डलता है। अगर यू आर अ मैन देन आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी कम हो सकते हैं पैराबेन से, ये प्रूवन है। एंड इफ़ यू आर अ वुमेन आपकी फर्टिलिटी पे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि पैराबेन इतना ज़्यादा टॉक्सिक है जो हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं, बाद में हमें इससे बहुत प्रॉब्लम्स होगी। कोई भी परफ्यूम यूज़ करो, कोई भी फेस वॉश यूज़ करो, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो, बट ये चेक करो कि पैराबेन फ्री होना चाहिए। और अगर आपको हमारी परफ्यूम्स देखनी है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर लो। हमने ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के बनाई है कि ना ही उससे टेस्टोस्टेरोन कम हो, ना ही उससे कोई दूसरा इफेक्ट पड़े, इसकी वजह से हम उसको सेफ एंड सिक्योर वे में बनाते हैं। बट इस साल ये डिसाइड कर लो कि लाइफ पैराबेन फ्री होगी इसी पॉइंट से। ये पार्ट है विजडम। वेल, मैं कोई इतना ज़्यादा बड़ा या एक्सपीरियंस इंसान नहीं हूँ जो बहुत ज़्यादा विजडम दे सके, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने सीखे हैं, ऑब्जर्व करें, मेरे आसपास जो लोग हैं और जो मेरे साथ पॉडकास्ट पे लोग आते हैं और मेरे जो माँ बाप ने सिखाया है, उन सब से मुझे कुछ विजडम मिली है या उन सबको ऑब्जर्व करके साइलेंटली मैंने कुछ मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, वो मेरी एक छोटा सा ना विजडम का खजाना बन चुका है जिसने मेरी लाइफ को बहुत बेटर किया है, और मैं वही शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। ये पॉइंट है नीड्स वर्सेस वांट्स। हमारी पेरेंट्स की जनरेशन को एक चीज़ बहुत अच्छे से आती है जो हमें नहीं आती, वो है अपनी नीड्स एंड वांट्स को डिफ्रेंशिएट करना। जब भी मैं मेरे पापा के पास जाता हूँ कि पापा बेटर फ़ोन ले लो, आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा, इससे आपके बिजनेस के लिए अच्छा होगा, वो बोलते नहीं यार अभी ज़रूरत नहीं है। फिर मैं उनसे बोलता हूँ कि यार ये बेटर शर्ट ले लो, आप मीटिंग्स में और ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिखो, बोलते नहीं यार अभी ज़रूरत नहीं है। हमेशा वो मुझे बता देते हैं कि उनकी ज़रूरत क्या है और उनको क्या ज़रूरत नहीं है, लाइफ में उनके लिए क्या अपग्रेड है और क्या इम्पॉर्टेंट है। और ये ना हम लोगों की जनरेशन को इतने अच्छे से नहीं आता। हम लोगों को क्या लगता है कि यार मेरे पास तो अच्छा फ़ोन ही नहीं है, लेटेस्ट आईफोन नहीं है, इसकी वजह से मैं कंटेंट ही नहीं बना सकता, मेरे पास ना एकदम फुल फ्लेज्ड सेटअप नहीं है पीसी का, बढ़िया लैपटॉप नहीं है तो मैं एडिटिंग ही स्टार्ट नहीं कर सकता, मुझे ना बाइक चाहिए नहीं तो मैं ऑफिस कैसे जाऊँगा। इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर हम कंप्लेन करते हैं और हमें लगता है कि ये अगर नहीं होगा तो हम आगे का काम कैसे करेंगे, और वो सारी चीज़ें वॉन्ट्स होती है, नीड्स नहीं। तो हमें हमारी पेरेंट्स की जनरेशन से सीखना चाहिए कि ज़रूरतों को और चाहतों को डिफ्रेंशिएट कैसे करें, नीड्स क्या होती है, वांट्स क्या होती है। तो इसलिए आज एक बड़ा सा पेपर लो और उसमें एक साइड लिखो नीड्स, एक साइड लिखो वांट्स। कौन सी ऐसी चीज़ें जो एकदम ज़रूरी है तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने में, जो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, जो होनी चाहिए, नहीं तो उसके बिना कुछ हो नहीं पाएगा। एंड देन एक साइड वांट्स लिखो कि अगर ये होता तो बेटर होता, कौन कौन सी चीज़ें कि अगर ये होता तो बहुत बेटर होता। इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सीखो। मैं मेरी लिस्ट लगाता हूँ, तुम उस लिस्ट को देख के अपनी लिस्ट भी देखो। नेक्स्ट पॉइंट है माय रेड फ्लैग्स। हर साल ना हम क्या करते हैं, हम दूसरों में रेड फ्लैग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस लड़की में ये रेड फ्लैग हैं, इस लड़के में ये रेड फ्लैग हैं, इसमें ये रेड फ्लैग है, इसमें ये गंदी बात है, इसमें वो गंदी बात है, पर हम खुद के अंदर क्या रेड फ्लैग्स हैं ये तो कभी देखते ही नहीं है। तो इस साल डिसाइड कर लो कि हम दूसरों के बारे में गॉसिप करने से ज़्यादा या दूसरों के बारे में रेड फ्लैग निकालने से ज़्यादा हम खुद के अंदर रेड फ्लैग्स देखेंगे और उसको सुधारेंगे, उन रेड फ्लैग्स को ग्रीन करेंगे। जैसे मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जब भी किसी से लड़ता हूँ, मेरे भाई से, मेरी गर्लफ्रेंड से, मेरे मॉम से, मेरे डैड से, मैं हमेशा बोलता हूँ यार क्या लड़ाई कर रहे हो, बंद करो उसको। जब भी हम लड़ाई करते हैं 10 मिनट होती है हमारी, आर्ग्यूमेंट होती है, डिस्कशन होता है, उतने बोलता हूँ यार बंद करो, कल बात करेंगे, मुझे सोना है, मुझे जाना है, मैं निकल जाना है। फिर ना एक बार जब मैं लड़ रहा था मेरे भाई से, उसने मुझे बोला अबे तूने खुद को देखा है क्या, तू क्या कर रहा है। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम मुझ में, ये रेड फ्लैग मेरा है कि मैं सामने वाले को सुनता ही नहीं हूँ और उसको समझने की कोशिश ही नहीं करता हूँ। मे बी उनका एक वैलिड पॉइंट है, मे बी उनका वैलिड पॉइंट नहीं है, लेकिन वो मुझे कुछ समझाना चाह रहे हैं, पर मैं कभी रुक के सुनता ही नहीं था। तो उसके बाद से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं खुद के रेड फ्लैग देखूंगा और मैं खुद में क्या गलत कर रहा हूँ वो देखूंगा, ताकि मैं सामने जब नेक्स्ट टाइम लड़ूँ तो वो ओवरऑल सिचुएशन बेटर कर दूँ, ना कि उसको उसी टाइम कट करके आगे बढ़ जाऊँ। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्ट टेकिंग स्मॉल डिसीजंस। हम ना लाइफ में डिसीजंस ही नहीं ले पाते। हमको ना कभी स्कूल ने सिखाया, ना कॉलेज ने सिखाया, ना हमारे आसपास के लोगों ने सिखाया कि डिसाइड कैसे किया जाता है। ये पता है ब्रेन को ट्रेन करके सिखाया जाता है। हमारी लाइफ में जब भी बड़े डिसीजंस होते हैं, हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं कि यार ये सही होगा नहीं होगा, लेना है नहीं लेना है, क्या करना है पता नहीं। तब हम लोगों से पूछना स्टार्ट करते, जो सही लोग नहीं उनसे भी पूछना स्टार्ट कर देते, और उन सब के बीच में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे आसपास इतने ऑप्शंस, इतनी चॉइसेस, इतनी चीज़ें कि हमें पता ही नहीं डिसाइड कैसे करना है। इनफैक्ट एक सर्वे था कि 86% जेन ज़ी को मेन्यू एंजाइटी है। मतलब जब हम रेस्टोरेंट पर जाते हैं और मेन्यू कार्ड देखते हैं, तब हम एंशियस हो जाते हैं कि यार क्या ऑर्डर करूं, पता ही नहीं है क्या करूं, इतने सारे ऑप्शंस हैं। हर किसी के साथ ये होता है। तो आज से ना छोटे छोटे डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दो कि मैं कौन से कलर के कपड़े पहनूंगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या खाऊँगा, मेरे को किस रेस्टोरेंट में जाना है, इतने सारे वीडियोज़ में से, इतनी सारे मूवीज़ और टीवी शोज़ में से मैं क्या देखूँगा। कन्फ्यूज़ मत हो, जो भी हो वो डिसाइड कर लो, क्योंकि जब तुम छोटे डिसीजंस लोगे तब तुम्हारा ब्रेन ट्रेन होगा बड़े डिसीजंस लेने के लिए, और लाइफ में बड़े डिसीजन तुम आसानी से ले पाओगे। अपने ब्रेन को ट्रेन करना स्टार्ट करो, सो स्टार्ट टेकिंग स्मॉल डिसीजंस। द नेक्स्ट पॉइंट है लेस देन 1 मिनट। इस साल ये डिसाइड कर लो कि किसी भी चीज़ को करने में अगर 1 मिनट से कम लगता है तो वो उसी टाइम कर लो, क्योंकि जो 1-1 मिनट की चीज़ हम पेंडिंग करते थे ना, ऐसे प्रोकेस्टिनेट करते हैं, अरे कल कर लूँगा, अरे कर लूँगा, अरे कर लूँगा, अरे कर लूँगा, वो होती नहीं, और एंड में जाके बहुत सारी हो जाती है, एंड देन फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि यार कुछ भी नहीं हुआ। मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। तो पहले ना मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि यार TV रिचार्ज करवा दे, इंटरनेट रिचार्ज करवा दे। मैं बोलता हूँ कर दूंगा, रात को कर दूंगा, हो जाएगा। पापा मुझे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दे, इंटरनेट से भर दे, हमें नहीं आ रहा है। मैं बोला कर दूंगा यार, अभी हो जाएगा, ठीक है। फिर मुझे ब्लड टेस्ट कराना है, पता है मुझे 1 मिनट लगेगा ब्लड टेस्ट कराने में, लेकिन कर दूंगा कर दूंगा। एंड ये कर दूंगा के चक्कर में मैं 6-6 महीने लगाता हूँ, कर ही देता हूँ। मम्मी की TV बंद हो जाती है 4 दिन बाद, पापा के इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर उनको फाइन लग जाता है, और मैं मेरा ब्लड टेस्ट साल भर तक नहीं करा पाता हूँ। इन सब चीज़ों को क्योंकि मैं टालते जाता हूँ, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बाद में बहुत बड़ी बन जाती है, एंड उस टाइम पे हम रियलाइज़ भी नहीं करते कि सामने वाले को या हमको खुद को कितना इनकन्वीनियंस कॉज होगा ये 1 मिनट का स्किप करने पे। तो इसलिए जो भी ऐसे 1 मिनट के अंडर में काम हो जाते हैं ना, छोटे छोटे से, भले वो OTP देना हो, या अप्रूवल देना हो, या किसी से बात करना हो, या किसी को फ़ोन करना हो, या कोई बिल भरना हो, वो सब हाथ के हाथ करके ख़त्म करो, क्योंकि हाथ के हाथ हो गया तो हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट है इट्स ओके टू बी स्टक। हर सक्सेसफुल इंसान इस एग्जैक्ट फेज से गुजर चुका है जिससे तुम गुजर रहे हो। इस फेज में जहां तुम्हें लग रहा है ना कि तुम स्टक हो, तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या करना है, जो तुम करते आ रहे हो सही है कि नहीं है, तुम्हें बहुत लोनली फील हो रहा है, क्योंकि जो तुम्हारे पुराने दोस्त हैं वो प्रॉब्ली तुम्हारी इस स्टेज को समझ नहीं पा रहे, और जो आगे जिनको तुम चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त बने, तुम उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए हो, तो तुम्हें बड़ा स्टक फील हो रहा है कि यार मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, क्या मैं सेल्फिश तो नहीं हो रहा हूं, क्या मैं लोनली हूं। कुछ भी नहीं है ऐसा। इट्स ओके टू फील दिस वे। तुम स्टक नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, तुम सेल्फिश नहीं हो, ये फीलिंग ग्रोथ की है। इस फेज में ऐसा होगा, बट जो तुम आज तक करते आए हो, जिसकी वजह से तुम इस फेज में आए हो ना, वो ही करते जाओ, क्योंकि यही तुम्हें आगे भी लेके जाएगा। तो तुम्हें गलत फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर सक्सेसफुल इंसान इस फेज से जा चुका है, एंड तुम भी इसी फेज से गुजर रहे हो, तो इट्स ओके टू फील स्टक। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स इट डेली। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है। तुम आज जिस भी जगह पे हो, क्या तुम हैप्पी हो? अगर तुम हैप्पी हो, तुम्हें लगता है कि यही वो जगह जहाँ मैं डिज़र्व करता हूँ और मुझे इतना ही पहुँचना है, तो ये पॉइंट स्किप कर दो। बट तुम्हें लगता है कि यार वो ये जगह नहीं है जहाँ तुम्हें पहुँचना है और तुम इससे बहुत आगे जा सकते हो, देन ये पॉइंट तुम्हारे लिए। तो अगर तुम्हें लगता है जहाँ तुम्हें पहुँचना है वो आज तुम नहीं पहुँच पाए हो, तो आज रात को बैठो और ये क्वेश्चन पूछो, वेयर डू आई नीड टू रीच, मुझे कहाँ पहुँचना है, क्या ऐसा है जो मुझे अचीव करना है, एंड उसके लिए मुझे क्या करना होगा जो आज मैंने नहीं किया। मैं ये खुद से रोज पूछता हूँ और तुम भी खुद से रोज पूछना स्टार्ट करो। इससे जो इम्प्रूवमेंट आएगा लाइफ में, शायद किसी और चीज़ से इतना ज़्यादा नहीं आएगा। वो आइडेंटिफाई करो एंड रोज उस पर काम करना स्टार्ट करो। एंड लास्ट पॉइंट है, हेल्प अदर्स। ये है लास्ट पॉइंट और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ना हमेशा लाइफ में ये सोचते हैं कि मैं बेहतर कैसे बनूं, मैं जीतूं कैसे, मैं सक्सेसफुल कैसे बनूं, मैं खुद की हेल्प कैसे करूं, मैं अचीव और ज़्यादा कैसे कर सकता हूं, मैं। इनफैक्ट पूरा का पूरा एक सेक्शन होता है इंटरनेट पे, बुक्स पे, और इतनी सारी बुक्स हैं सेल्फ हेल्प, खुद की हेल्प कैसे करें। बट पता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्प अदर्स। हमें कभी कोई सिखाता ही नहीं है और ना इसके ऊपर कोई बुक है और ना इसके ऊपर कोई वीडियोज़ हैं कि हम दूसरों की हेल्प कैसे करें। और अगर हमें बेहतर बनना है और आसपास की पूरी सोसाइटी को बेहतर बनाना है और पूरी कंट्री को अगर बेटर करना है, तो फिर हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। हम अपने दोस्तों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, अपने व्यूअर की हेल्प कैसे कर सकते हैं, अपने कस्टमर की हेल्प कैसे कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी हेल्प अदर्स, हमें ये सीखना पड़ेगा। तो 2024 में एंड 2025 में एंड 2026 में और हर साल हम आज से ना ये तय करते हैं कि हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। मुझे वो नहीं आता, प्रॉबेबली आपको भी नहीं आता होगा, पर साथ में अगर कुछ आइडियाज़ हैं तो शेयर करो मेरे साथ कमेंट्स में, ताकि हम एक दूसरे से सीख के सबकी हेल्प कर पाएं। एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वेल, ये सारे पॉइंट्स आपने देख लिए, पर इनका ना कोई मतलब नहीं निकलना है अगर आप अपनी लाइफ में ये इम्प्लीमेंट नहीं करते हो और अप्लाई नहीं करते हो। ये सब ना मैंने मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे और उनकी वजह से मेरी लाइफ बहुत बेटर हुई है। ये इतने सारे पॉइंट्स हैं कि एक साथ सबको अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए आप एक काम करो कि हर महीने सिर्फ दो इम्प्लीमेंट करो। 24 पॉइंट्स हैं, साल भर में आराम से कवर हो जाएंगे। मैं भी एक एक पॉइंट एक एक दिन में, एक एक हफ्ते, एक एक महीने में करता था आराम आराम से, और उसके बाद मैंने ये बिहेवियरल हैक्स मेरी लाइफ में लेके आया हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो जहाँ पे मैं सिर्फ सोलो आपके सामने आऊँ और मेरी लाइफ की लर्निंग्स, मिस्टेक्स और सारी वो चीज़ें बताऊँ जिनसे मुझे मेरी लाइफ में हेल्प हुई है आगे बढ़ने के लिए। मैं मेरी स्टोरी बताऊँ और मेरी सारी मिस्टेक्स आपके सामने रखूँ। मुझे कमेंट्स में बताओ और बताओ कि मैं इसको और बेहतर तरीके से कैसे बना सकता हूँ, और ऐसे वीडियोज़ आपको देखने भी हैं कि नहीं देखने हैं। वेल, आई एम राज शमानी and I'm just a young Indian man who's constantly figuring out how all of us can get better. मेरी सिर्फ इतनी सी कहानी है और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप, मैं, हम सब कैसे बेहतर बन सकते हैं। Until the next episode, keep figuring out and happy new year.